हमने देखा कि अल्लाह के नबी ने यहूद की ऑफ़र को कबूल किया। ये अक्लमंदी भी थी और हालात का तकाजा भी यही था, ताकि वो लोग अपने इलाके को खुद निभाएं और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कराएं, मुसलमानों को ट्रेनिंग मिले। और बाद में फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उन्हीं की कुछ शरारतों की वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को 36 यानी 36 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्सा 100 हिस्सों का मजमूआ था। नोट करिए ज़रा कितना बड़ा खैबर है। 36 पार्ट्स बने थे वहाँ की जगहों के, ज़मीनों के। इसमें से नेस्ट यानी 18 हिस्से मुसलमानों की इज्तमाही ज़रूरियात, और हवादिस यानी एक्सीडेंट्स या जो भी आफात होती हैं उनके लिए अलग कर लिए गए, और बाकी नेस्ट यानी 18 हिस्से इसी तरह गाजियों में तकसीम किए गए कि पैदल चलने वालों को एक हिस्सा और घुड़सवार को 3 हिस्से दिए गए। एक हिस्सा इसका अपना और 2 हिस्से इसके घोड़े के। ये क्यों भाई? इंसान का एक हिस्सा, घोड़े के 2, क्योंकि घोड़े को इंसानों से ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। लिखे अमल की बात, ज़्यादा जानवर खाते हैं, इंसान थोड़ा खाते हैं। और यहाँ से ये भी सीखिए कि अल्लाह का दीन इंसान तो इंसान जानवरों का हक भी देता है। वलादियाति दबहन फलमूरियाति कदहन की तफसीर सुन लीजिए जाके, कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले घोड़ों के कदमों की भी अल्लाह ताला कैसे कसम देता है। दूसरी चीज़ इसको पढ़ते हुए मुझे जो मुझे ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ी तवज्जो देते थे। गो के दुनियावी एतबार से हिसाब किताब ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह आप चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ से कमल की बात लिखिए कि चीज़ों को छोटे हिस्सों में बांट लेना कामों को आसान कर देता है। अगर आपके पास बहुत सारे काम हैं और समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किसको क्या काम दूं, काम बहुत सारे हैं, लोग भी बहुत सारे हैं, एक कह के सबको सब काम दे दे, गलत है। आप क्या करें, जितने काम हैं उतने हिस्से बनाएं। मिसाल दे रही हूँ, सिर्फ मिसाल के लिए, सफाई या बिल्डिंग की हिफाजत है तो आप लिखें स्कूल में कितनी जगह है, किचन, कैंटीन, ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3, ऑफिस 4, लाइब्रेरी, इस तरह लिख लें। फिर काम करने लिए साथियों की तादाद लिख लें। डबल है तो एक एक जगह दो दो को दे दें, एक एक है तो एक एक को दे दें, लोग कम है दो दो जगह एक को दे दें। तो ये क्लासिफिकेशन और जिसको आप कहें कि असाइन कर देना चीज़ों का लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा फिर फायदा लाता है। इस गजबे में 200 शाह सवार थे, यानी घोड़ों पर सवार जो लोग थे वो 200 थे। इनके 6 हिस्से हुए, कैसे, 3 दिन हुए एक के, और 1200 पैदल थे, 1200 पैदल थे। यानी आप देखिए कि उस दौर में वही 1400 जो के करीब लोग जो के उम्रे हुदैबिया से वापस आए थे वही आए थे, तो लिहाजा इनके 12 हिस्से हुए। अगर सोचिए वो भी लोग आ जाते जिनको अल्लाह के नबी ने कहा था कि आपको माल गनीमत नहीं मिलना, इस वक्त वो क्या सोच रहे होते कि इनको इतना कुछ मिल रहा है, हमें क्या मिला। और गज़वे खैबर में मुसलमानों को जो माल असबाब मिला था, इसके बारे में मिसल मारूफ है कि मुसलमानों का चूल्हा नहीं जल रहा था यहाँ तक के खैबर फतह हुआ। यानी पेट भर के रोटी खाई लोगों ने इतने सालों की कुर्बानियों के बाद। तो बहरहाल इस दौरान कुछ वाक़यात भी हुए थे। एक क्या था कि आपकी जान लेने की कोशिश की गई, जहरीली बकरी। जब हालात पुरसकून हुए और खौफ जाता रहा तो यहूद अपने खुब्स पर पलट आए, यानी अपनी खबीसी और गंदी आदत पे पलट आए, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की। चुनाच अपने बड़ों में से एक शख्स सलाम बिन मुशकम की बीवी के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जहर आलूद बकरी हदिया की। इसे मालूम था कि रसूलुल्लाह को बाजू पसंद है, दस्ती का गोश्त, लिहाजा उसने बाजू में ज़्यादा जहर डाला। अल्लाह के नबी ने इस बकरी का एक लुकमा लेकर चबाया, फिर इसे थूक दिया और फरमाया कि ये जहर आलूद बकरी है। गैब जानते होते तो क्या एक लुकमा लेते और क्या उनकी दावत को कबूल करते। यहाँ से एक और भी मिजाज देखिए कि जंगें लगी हुई हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और दावत कबूल कर रहे हैं अल्लाह के नबी। हम किस तरह की चीज़ें रखते हैं? एक तो ये कि इनके सारे अकायद को दिल में अच्छा समझते हुए इनसे मिलते रहते हैं लोग, कुछ नहीं होता, ये भी इंसान है, तुमसे अच्छे, इंसानों से अच्छे हैं। और दूसरी तरफ ये कि इतना दीन के नाम पे कट जाते हैं कि हम इनका नाम भी नहीं सुनते। बैलेंस रखना है, अपने अकायद और नज़रियात पे जमे हुए, बग़ैर कॉम्प्रोमाइज़ किए, किसी हराम हलाल का फ़र्क किए बग़ैर इनकी दावत को नहीं मानना, बल्कि अपनी लिमिट्स के साथ, अगर इस तरह से आप किसी के करीब हों कि उससे उसके और इस्लाम के बीच में गैरियत और अजनबियत का पर्दा चाक हो, तो फिर ये पसंदीदा है। बहरहाल, फिर आपने इस औरत से और यहूद से पूछा तो उन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। अब देखिएगा कि बात कैसे बनाते हैं। और कहा कि हमने सोचा कि अगर ये बादशाह है, यानी नबी नहीं है, सिर्फ एक झूठा बादशाह है, तो हम इससे राहत पा जाएंगे, यानी जान छूट जाएगी कि चलो जी, है था बादशाह लेकिन नबी बन के आ गया, और अगर नबी है तो इसे जहर नुकसान ना पहुंचा सकेगा। अब आप देखिए, ये उजरे लंग है, लेकिन अल्लाह के नबी ने इनको माफ़ कर दिया, औरत को भी। लेकिन बाद में बिशर बिन बरा बिन मारूर इसी जहर की वजह से इंतकाल कर गए, तो आपने औरत को कसास में कत्ल करा दिया। अल्लाह अकबर, किस तरह से आप देखिए कि ये सारा मामला हमारे सामने आता है, और हम सब इसको लेकर देखें तो हमारे लिए अमल की बहुत सारी बातें हैं। फिर एक और वाक्य अहले फिदक की सुपुर्दगी था। फिदक क्या है? खैबर के मशरक में 2 दिन के फासले पर एक बस्ती थी जो आजकल हाइल के इलाके में हायत के नाम से मारूफ है। आपने खैबर पहुँच कर महीसा बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हो को यहूदे फदक के पास भेजा कि उन्हें इस्लाम की दावत दें, मगर उन्होंने ताखिर की, यानी देर की, पोस्टपोन किया, डिले किया। लेकिन जब खैबर की फतह का हाल सुना तो इन पर रोबतारी हो गया, और उन्होंने पैगाम दिया कि इनके साथ भी अहले खैबर जैसा मामला किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मंजूर फरमा लिया। चुनाचे फिदक की ज़मीन सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस थी, इसमें से आप अपने ऊपर खर्च फरमाते थे, बनु हाशिम के बच्चों की आयालदारी करते, यानी उसकी टेक केयर करते, और इनमें से गैर शादीशुदा ज़रूरतमंदों की शादी फरमाते थे। नोट कीजिएगा, आप खुश हो गए होंगे बेटियों के जहेज़ की दलील मिल गई, लेकिन आप जुमला पढ़ के देखें, गैर शादीशुदा ज़रूरतमंदों की शादी, मर्दों की तरफ इशारा है। अरबों में जब शादी होती है तो खर्चा लड़का करता है, बीवी को रखना, उसका रहन सहन, उसका मेहर, ये सब मर्द के ज़िम्मे होता है, तो अल्लाह के नबी फिर उन मर्दों के लिए इसमें से पैसा खर्च करते थे। तो आप देख सकते हैं कि एक इलाका जब आपको मिलता है तो उसके इर्द गिर्द वाले लोग भी आपसे मुतासिर होते हैं, इसलिए जहाँ भी आप कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं ना, क्लासेस लेते हैं, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों पर भी नज़र रखा करें। हो सकता है उनके भी दिल में शौक़ हो कि आप हमारे भी पास कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें ताकि हम भी अपने इलाके के लोगों को बुला सकें। फिर वादी अल-क़ुरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के बाद वादी अल-क़ुरा तशरीफ़ ले गए, और वहाँ के बाशिंदों को जो यहूदी थे इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने ना इस्लाम कबूल किया ना आपके ताबे फरमान हुए, बल्कि जंग के लिए निकल आए। इनका एक आदमी मैदान में आया और इसे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल कर दिया। फिर दूसरा आया, इसे भी उन्होंने कत्ल किया। फिर तीसरा आया, इसे हज़रत अली ने कत्ल किया। इस तरह इनके 11 यानी 11 लोग जो थे वो कत्ल हुए। जब भी कोई एक आदमी मारा जाता तो आप बाकी यहूद को इस्लाम की दावत देते, ये नुक्ता नोट कीजिएगा, मारना होता सबको मार के ख़त्म कर देते, लेकिन दावत देते कि इसकी मौत से अगर इबरत ली है तो तुम भी आ जाओ। ये है असल मिशन, इसको हाईलाइट करें। हमारे नबी का मिशन लोगों को मारना नहीं था, इस्लाम की तरफ लाना था। इस्लाम की दुश्मनी काफिर से नहीं, कुफर से है। कुफर मिटा दें तो काफिर आपका भाई है, उसको गले से लगा लें। और जब भी कोई नमाज़ पढ़ते तो उन्हें इस्लाम की दावत देते। गरज इसी तरह शाम हो गई, क्यों? क्योंकि नमाज बंदे को मुबल्लिग भी बनाती है कि जो सुकून और जो खुशी मुझे अल्लाह की याद में मिल रहा है तुम भी ले लो। दूसरे दिन सुबह फिर तशरीफ़ ले गए, लेकिन सूरज अभी नेज़ा बराबर भी बुलंद ना हुआ था कि यहूद शिकस्त खा गए और मुसलमानों ने बहुत सा माल गनीमत हासिल किया। फिर यहूद ने गुजारिश की कि इनके साथ भी अहले खैबर जैसा मामला किया जाए। आपने मंजूर फरमा लिया और इनके लिए बात तहरीर फरमा दी। तो गोया कि आप नबी सल्लम की हिकमत अमलियाँ देखिए, स्ट्रेटजीज देखिए, जब भी आपको कोई काम करना कराना मैनेजमेंट के नाते से खोल के सीरत पढ़े कि अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके पे क्या किया था, लो मैं भी पढ़ के देखती हूँ। फिर अल्लाह से दुआ मांगे, इस्तखारा करें, शरह सदर की दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे इस मामले को निपटाना। अहले तैमा की मुसालहत, तैमा के यहूद को खैबर, फदक और वादी अल-क़ुरा की खबरें मौसूल हुईं और उन्होंने जिज़िया की अदायगी पर सुलह कर ली और अपने इलाके में अमन के साथ बरकरार रहे। हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा से शादी। हज़रत सफ़िया बिनत खुई बिन अख्तब को जब कैदियों में शामिल किया गया तो इन्हें रसूलुल्लाह की इजाज़त से हज़रत दाहिया बिन खलीफा कल्बी ने ले लिया। लेकिन सहाबा ने आकर रसूलुल्लाह से अर्ज़ की कि वो सिर्फ़ आपके शायान शान हैं, वो कुरैज़ा और नज़ीर की सरदार हैं। रसूलुल्लाह ने इन्हें बुलाकर इन पर इस्लाम पेश किया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर आपने इन्हें आज़ाद करके इनसे शादी कर ली और इनकी आज़ादी ही को मेहर करार दिया और इन्हें बाज़ औरतों के हवाले कर दिया। जब खैबर और वादिल कुरा फतह हो गए, फदक और तैमा के बाशिंदों ने इताद कबूल कर ली और आपने मदीना वापसी की राह ली तो वादी सहबा में पहुँच कर हज़रत सफ़िया हलाल हो गई। चुनाचे इन्हें आपके पास रुख्सत कर दिया गया और आपने दूल्हा की हैसियत से इनके हमरा सुबह की और खजूर पनीर और घी सान कर वलीमा खिलाया और 3 रोज़ शबहाए उरूसी के तौर पर इनके साथ क़याम फरमाया, फिर रवाना हो गए। और सफ़र 7 हिजरी के आखिर या रबीउल अव्वल 7 हिजरी के अवाइल में मदीना तशरीफ़ लाए। तो यहाँ देखिए, एक तरफ जंगे साथ है, शादियाँ हो रही हैं, हम होते तो अभी तो इस दौरान रिश्ता ढूंढते, फिर पहला फेरा, फिर अंगूठी ढूंढने जाते, फिर दुल्हन क्या पहनेगी वो ढूंढते, फिर मैचिंग चीज़ें, फिर हॉल ढूंढते। कितना मुश्किल कर दिया हमने शादी को। और आपको अब अल्लाह के नबी की सारी शादियों का तनाजर भी समझ आ रहा होगा कि आप कितनी आसानी से ये सारे काम कर करा लेते थे और हम इस वक्तों में भी उलझे होते हैं। हैरत की बात है, एक शादी इतनी डिले करते हैं, अब वो आ गया, अब उसको जाना है, पाकिस्तान जाना है, फलां मर गया जी गया, सबका ख्याल रखते रहते हैं और जिनकी शादी हो रही होती है उनका ख्याल नहीं रखते कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है बार बार हमारी शादी के डिले करने की। ऊपर हजरत सफ़िया के बारे में बहुत खूबसूरत वाक़ियात आते हैं कि किस तरह से अल्लाह ने इनको इस्लाम में और इस तरह चुना। बल्कि कहते हैं कि जब ये अभी ज़ाहिर यहूदिया थी, अल्लाह को तो मानते थे, शादी इनकी हुई हुई थी, तो इन्होंने ख्वाब देखा कि चांद इनके घर में आके आंगन में उतरा। ये बात इन्होंने अपने शौहर को सुनाई तो उसने ज़ोर से थप्पड़ मारा इनको, उनके मुंह पे निशान पड़ गया। कहने लगा, हालांकि देखिए उस वक्त तक कोई आसार नहीं थे अल्लाह के नबी के साथ इनके निकाह के, कहने लगा कि तू अरब के आखिरी नबी के ख्वाब देख रही है। यानी इतना बड़ा वो आलिम था या अपने दीन का था कि उसको पता था कि इस ख्वाब की तबीर क्या है, कि अल्लाह के नबी दुनिया में आने वाले हैं, हालात बन गए और सफ़िया की उनसे शादी होगी। फिर दूसरी चीज़ आप देखिए कि इससे ये भी पता चल जाती है कि अगर एक ज़िंदगी में टारगेट और एक इंसान के पास ऐसा चैलेंज है कि जिसके तकाजे ज़रा संजीदा नौइयत के हैं या आपके लिए इज्तमाही कामों में है, लेकिन उसके बीच में अपनी इनफरादी ज़िंदगी के कामों को छोड़ना नहीं चाहिए और इसी तरह इनफरादी कामों में इज्तमाही चीज़ों को नहीं छोड़ना। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि स्कूल भी आए हुए और साथ ही साथ वहाँ बच्चे का निकाह भी करवा दिया, निकाह हो गया और साथ ही फिर उसके बाद वहाँ बैठ के पढ़ाने लग गए या कोई और काम करने लग गए। तो दुआ कीजिए कि दीन इस तरह हमारे घरों में रच बस जाए कि हम किसी तौर पर भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर ना कर सकें। कुछ और चीज़ें एक दो जो मुख्तलिफ रवायतों से हमें इस जंग के बारे में गज़वा खैबर के लिए मिलती हैं, और वो यही है कि रैंडमली कुछ बातें शेयर कर देती हूँ जो अभी तक नहीं हुई। और उसमें यह है कि हज़रत अली का सबसे बड़ा इसमें किरदार हमें दिखता है। अल्लाह के नबी की ज़ुबान से अल्लाह के महबूब होने की खबर मिली, फिर आपके आने की उम्मीद नहीं थी लोगों को लेकिन आप आके और आपने फिर इस खुशी में उनको झंडा भी दे दिया। फिर इसके बाद ये कि इस जंग में अल्लाह के नबी ने कुछ पेशन गोईयां भी कर दी कि ये किला फतह होगा तो वो फतह हुआ, तो ये अल्लाह के नबी की नबूवत और सच्चाई की दलील है। फिर इसके बाद मुस्नद अहमद की एक रिवायत में आता है कि सहाबी कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक ने झंडा पकड़ा लेकिन वो मखसूस और अहम किला फतह किए बगैर वापस आ गए तो अगले दिन फिर झंडा पकड़ कर रवाना हो गए, लेकिन आज भी किला फतह ना हो सका और इस दिन लोगों को खूब मशक्क़त और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा और जिससे वो मोहब्बत करेंगे। तो अबू बकर सिद्दीक का मुकाम अली से बहुत ज़्यादा था लेकिन उनके हाथों तो खैबर फतह नहीं हुआ। तो यहाँ से भी पता चलता है कि फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी और एक काम में एक बंदा अच्छा हो सकता है दूसरे में दूसरा, अल्लाह किसी एक को देता है किसी को दूसरा देता है। तो ये चीज़ें आपस में कोई झगड़े का जरिया नहीं बनती, हर एक अपने काम करने की सलाहियत को पहचाने और फिर उसको ये कर ले। फिर इसके बाद जिस काम के लिए भेजा जाए उधर ही तवज्जो रखना, ये भी हमें इसमें से मिलता है क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं कि हैबर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये झंडा मैं ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह इसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैंने इस दिन के अलावा कभी भी अमीर बनने की आरजू नहीं की कि आज मुझे इमारत मिल जाए, मैं लीडर बनूं और ये खुशखबरी पा लूं। कहा कि फिर मैं इस उम्मीद को लेकर आपके सामने आया कि आप मुझे इस काम के लिए बुला लेंगे। सामने सामने फिर बंदा होता है ना कि मुझे ही देख के कह देंगे। फिर आपने अली बिन अबू तालिब को बुलाया तो आपने वो झंडा इनको दे दिया और आपने फरमाया, जाओ और किसी तरफ तवज्जो ना करो यहाँ तक कि अल्लाह तुझे फतह अता फरमा दे। ये है जुमला इसमें। फोकस होके जो काम करेगा उसी में बरकत होगी। अच्छा, क्या हजरत उमर के दिल में फिर हसद आया, या पिछले ही हदीस को सुन के अबू बकर के दिल में आया कि अच्छा जी मेरे हाथों झंडा नहीं, वो आपसे हो गया, आप बड़े बन जाएं बस। नहीं, दिल एक था, मकसद पे नजर थी, आप करो मैं करूं बस काम करो। ठीक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इन लोगों से उस वक्त तक लड़ो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही न दें। तो जब वो लोग इस बात की गवाही दे दें तो उन्होंने अपना खून और माल तुमसे महफूज कर लिया सिवाय किसी हक के बदले, और इनका हिसाब अल्लाह पर है। ये सही मुस्लिम की रिवायत 6222 पे है। इसी तरह आप देखिए कि इसमें हमने सहाबी के बारे में देखा कि आमिर को शहादत का दुगना अजर मिला। बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, सुनानी पड़ेगी आपको। सलमा बिन अकवो जो इनके भाई हैं वो रिवायत करते हैं कि हम अल्लाह के नबी के साथ हैबर की तरफ निकले। हम रात के वक्त सफ़र कर रहे थे कि एक शख्स ने आमिर से कहा, आमिर तुम हमें अपने अशआर में से क्यों नहीं कुछ सुनाते। आमिर एक शायर थे, ये सुनकर वो नीचे उतरे और शेर कहने लगे, कहे अल्लाह अगर तू ना होता तो हम हिदायत याफ्ता ना होते, और अगर तू ना होता तो हम सदका ना कर सकते, ना नमाज पढ़ सकते। बस हमारी मग़फ़रत फरमा जब तक कि हम जिंदा हैं, हमारी जानें तेरे रास्ते में फिदा हैं, और अगर हमारी मुठभेड़ हो जाए तो हमें साबित कदम रख और हम पर सकीनत नाजिल फरमा। जब हमें बातिल की तरफ बुलाया जाता तो हम इनकार कर देते हैं। आज चलाते हुए हमारे खिलाफ वो मैदान में आ गए। रसूलुल्लाह ने कहा, ये शेर कौन कह रहा है? सहाबा ने कहा, आमिर बिन अकवो। आपने फरमाया, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो जमात में से एक शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी आपने तो इन्हें शहादत का मुस्तहिक करार दे दिया, यानी रहमत समझ रहे थे किसी का अल्लाह के रास्ते में शहीद होना। काश अभी हमें और इनसे फ़ायदा उठाने देते, यानी हम इनसे कुछ और शेर सुन लेते। फिर हम खैबर पहुंच गए तो हमने किले का मुहासरा कर लिया। इसके दौरान हमें सख्त भूख लगी, फिर अल्लाह ताला ने हमें फतह अता की। जिस दिन फतह हुई इसकी रात को लश्कर ने खूब आग सुलगाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आग कैसी है, किस चीज़ के लिए इसको जला रखा है? सहाबा बोले कि गोश्त पकाने के लिए। आपने दरियाफ़ फरमाया, किस जानवर का गोश्त? सहाबा ने बताया कि पालतू गधों का। आपने फरमाया, तमाम गोश्त फेंक दो और हांडियों को तोड़ दो। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या हम गोश्त फेंक दें या हांडियाँ धो डालें? आपने फरमाया, ऐसे ही कर लो, यानी कभी कोई गलत चीज़ पक जाए तो बर्तन को धो लें और खाने को फेंक दें। जब लोगों ने सफबंदी की तो चूंकि आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार छोटी थी इसलिए उन्होंने एक यहूदी की पिंडली पर झुककर वार करना चाहा तो इसकी धार पलटकर इन्हीं के घुटने के ऊपर लगी और इसी से वफात हो गई। सलमा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब वापसी हुई तो रसूलुल्लाह ने मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे फरमाया, क्या बात है? मैंने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आमिर का अमल ज़ाया हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कहते हैं वो झूठा है, इन्हें दुगना अजर मिलेगा। फिर आपने अपनी दोनों उंगलियां मिलाकर फरमाया कि उन्होंने तकलीफ़ और मुशक्क़त भी उठाई और अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया, शायद ही कोई अरबी हो जिसने इन जैसी मिसाल कायम की हो। ये सही बुखारी की रिवायत 4196 नंबर है। तो ये सारी रिवायत हमें बताती हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों में जो खूबियाँ होती थी तो अल्लाह के नबी सल्लम उसका जिक्र करते हुए उनकी तारीफ़ भी करते थे, और दूसरे लोग बजाय इसके कि उस पर नाराज़ हों खुशी का इजहार करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब भी एक दूसरे के बारे में खुशगुमान ही रहें। और इसी तरह एक और रिवायत पूरी है, उसको छोड़ते हुए आखिरी चीज़ उसकी पढ़ देती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मेहनत करता हुआ मुजाहिद बनकर फौत हुआ। एक रिवायत में आता है कि जो लोग इन पर नमाज जनाजा पढ़ने से घबरा रहे हैं, इन्हें गलती लगी है, वो तो मेहनत करता हुआ मुजाहिद बनकर फौत हुआ है और इसे दुगना अजर मिलेगा। ये कहकर आपने दो उंगलियों से इशारा फरमाया। जो मुसनद अहमद की 16503 नंबर की रिवायत है। तो पता क्या चला कि अल्लाह को पता है कि बंदे के क्या हालात हैं, किस तरह के। तो यहाँ पे गज़वे खैबर का टॉपिक पूरा होता है और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम सबको अमल की तौफीक मिले। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।